दिन भर 19 जनवरी रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा की खास पेशकश में आज आपके साथ होंगे।
नमस्कार, मैं हूं अच्छला शर्मा और इस नेक काम में मेरा साथ दे रहे हैं कुर्बान अली।
जी मैं विपुल मुद्गल।
मैं राजेश जोशी। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है।
ये दिग्गज प्रसारक याद करेंगे बीबीसी हिंदी रेडियो के बदलते सुनहरे दौर को।
तस्वीर बदलनी शुरू हुई 1980 के दशक के अंतिम दिनों से, 88-89 के जमाने में।
साथ ही होंगे रेडियो प्रसारण से जुड़े अनकहे किस्से।
बुश हाउस की गैलरी में कुर्बान अली और राजेश जोशी की ऐसी सामने आमने भिड़ंत हुई कि लगता है दर्द अभी तक हो रहा है।
दो दांत मैंने गंवा दिए, उसमें इतनी जोरदार इम्पैक्ट था।
लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। बर्लिन में वैश्विक नेताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि लीबिया में चल रही लड़ाई का अंत होगा। इस सम्मेलन में शामिल हो रहे राजनयिक विद्रोही बलों और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लीबिया की सरकार के बीच एक स्थायी संघर्ष विराम को बढ़ावा देना चाहते हैं। विद्रोहियों और सरकार का समर्थन कर रहे तुर्की और रूस के राष्ट्रपतियों की इस सम्मेलन के इतर मुलाकात भी हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने बर्लिन जाने से पहले कहा था कि आज की उच्च स्तरीय बातचीत संघर्ष विराम की ओर एक और बढ़ता कदम होगी।
DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına da şahit oluyoruz.
हम संघर्ष विराम और एक राजनीतिक समाधान प्राप्त करने के लिए बर्लिन शिखर सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। हम शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फैसलों के साथ सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक कई क्षेत्रों में ठोस विकास देखने की उम्मीद करते हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति के शब्द। ब्रिटेन के शाही परिवार में डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मर्केल के पिता ने प्रिंस हैरी और अपनी बेटी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने शाही उत्तरदायित्व छोड़कर शाही परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हाल ही में प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने खुद को शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य की भूमिका से अलग करने की घोषणा की थी। उनकी इस इच्छा को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने रजामंदी दे दी है। थॉमस मर्केल ने चैनल 5 डॉक्यूमेंट्री से बात करते हुए कहा,
She actually got every girl's dream. Every young girl wanted to become a princess, and she got that.
मेगन को असल में वो मिला जो हर लड़की चाहती है। हर नौजवान लड़की राजकुमारी बनना चाहती है और वो मेगन को मिला था। अब वो ये सब छोड़ रही हैं। मुझे नहीं पता, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बोल सकता। ये थे डचेस ऑफ ससेक्स के पिता थॉमस मार्केल के शब्द। ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु वनडे में भारत के सामने 287 रनों का लक्ष्य रखा है। 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 286 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 132 गेंद पर 131 रन की पारी खेली। हालांकि 48वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ के आउट होने से ऑस्ट्रेलियाई पारी को अंतिम गेंदों पर ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं मिल पाया। मोहम्मद शमी भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 63 रन देकर 4 विकेट ली। फिलहाल भारतीय टीम ने 26 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन में एक मस्जिद पर हुए हमले में सरकार समर्थित 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और 150 करीब घायल हुए हैं। ये मस्जिद एक प्रशिक्षण शिविर में स्थित थी। यमन में 5 साल पहले शुरू हुए टकराव के बाद ये अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। इन हमलों के लिए हुथी विद्रोहियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि वायरस कहां से आया है। वुहान में कोरोना वायरस संक्रमित 17 और मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 लोग गंभीर हैं। स्वास्थ्य टीमें संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए शहर के बस अड्डों और हवाई अड्डों पर इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रही हैं। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल यूरोप के 3 शक्तिशाली देशों ने ईरान के साथ पक्षपात किया तो ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अपना सहयोग पर विचार कर सकता है। संसद के स्पीकर ने कहा है कि ईरान इस पर कोई गंभीर फैसला ले सकता है। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान और अमरीका का विवाद सुलझाने की बात करते हुए ईरान पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक खास प्रस्तुति लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीबीसी हिंदी की रेडियो सेवा बंद हो रही है और इसका अंतिम प्रसारण 31 जनवरी को शाम 7:30 बजे होगा। उसी के मद्देनज़र आज के कार्यक्रम में बीबीसी हिंदी रेडियो के पुराने दिग्गज प्रसारक उसके सुनहरे और बदलते हुए दौर को याद कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं बीबीसी हिंदी रेडियो के वर्तमान संपादक राजेश जोशी, अचला शर्मा, परवेज आलम, कुर्बान अली और विपुल मुद्गल, और इस कार्यक्रम का संपादन किया है मोहनलाल शर्मा ने।
नमस्कार, मैं हूं अचला शर्मा। आज वर्षों बाद आपसे सीधे बातचीत करने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भूले नहीं होंगे, और भूलेंगे भी कैसे। प्रसारक और श्रोता का संबंध दूर होते हुए भी बेहद नजदीक होता है, तो सोचा आज इस बहाने मिल बैठ कर बीबीसी हिंदी की कुछ भूली बिसरी बातों को याद किया जाए, यानी जरा उम्र रफ्ता को आवाज दी जाए। और इस नेक काम में मेरा साथ दे रहे हैं कुर्बान अली।
जी, मैं विपुल मुद्गल।
मैं राजेश जोशी। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है।
तो आगे की बातचीत के लिए राजेश जोशी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ।
अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने बरसों बाद आपकी आवाज़ हमारे सामाईन श्रोता सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ज़ाती तौर पे कि इस स्टूडियो में पिछले कई दशक इकट्ठा हो गए। अगर समय को आप कंडेंस कर लें तो 80 का दशक है, 90 का दशक है, ये नई सदी है, सब इकट्ठा हो गए हैं। क्योंकि आपने अचला, अगर मुझे सही याद है तो 80 के दशक में शुरुआत की थी बीबीसी की।
बिल्कुल ठीक। मैं पहली बार जब बीबीसी हिंदी में गई तो 1981 जनवरी का महीना था, और पहली बार लंदन गई थी, पहली बार विदेश गई थी। और बीबीसी में गई तो ऐसा लगा कि एक पूरी दुनिया मेरे सामने खुल गई। जब तक भारत में थी, आकाशवाणी में काम करती थी, तो बाकी दुनिया बहुत दूर दिखाई देती थी, मीलों दूर लगता था, उससे अपना कोई संबंध नहीं है। लेकिन बीबीसी में जाकर ऐसा लगा कि जैसे वो सारी दुनिया एक बुश हाउस में सिमट कर आ गई है। तो हाँ, 1981 से 84 तक का ज़माना मैंने वहाँ देखा है।
तो उस दौर में परवेज साहब कुछ दिनों बाद या कुछ बरसों बाद आए थे।
हाँ, मैं तो पहुंचा हूँ वहाँ पे जनवरी 1988 में। ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, और उसके बाद मैं सीधा मैं लंदन पहुंचा। और ये वो वक्त था जो मुझे अच्छी तरह से याद रहता है कि जहाँ चीज़ें बदलने शुरू हो गई थी। 88, 89, 90, ये बड़े हलचल वाले
वो दौर ही पूरा
साल
अलग था।
है पूरे दुनिया के लिए, इसलिए कि जब 89 आता है तो सितंबर में बर्लिन वॉल कोलैप्स होती है, और उसके बाद में
पूरा दुनिया का नक्शा बदल जाता है।
दुनिया का पूरा जो निज़ाम है, कोल्ड वॉर है, यूएसएसआर है, सारी चीज़ें बदलती हैं। मुझे इसलिए अच्छी तरह से याद है कि मैं तो नया पहुँचा हूँ, ग्रीन हॉर्न जिसे कहते हैं, रूकी बिल्कुल ही, और उसमें मैंने कहीं प्रोजेक्ट सबमिट किया, और सब मुझको मौका मिला उस ज़माने में बर्लिन जाने का, यानी जर्मनी में गया, उसके बाद में प्राग गया, प्राग के बाद में बुदापेस्ट गया, बुदापेस्ट के बाद बुकारेस्ट गया। और ये जो फर्स्ट मल्टी पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे, मार्च तक हुए हैं 1990 में,
उसके जर्मनी।
एक मिनट के लिए मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ, और जो 81 से 83 तक मैं कहूँ, 3 साल में वहाँ रुकी थी और 84 जनवरी में वापस आ गई थी भारत, तो वो जो ज़माना था उसमें अभी परिवर्तन नहीं आए थे
जी,
और उस ज़माने में एक्चुअलिटी जिसे आज हम साउंड बाइट कहते हैं उसका भी रिवाज नहीं था, सीधे सीधे डिस्पैचेस हुआ करते थे।
ये जो आप कह रही हैं बदलाव जहाँ से आए, उस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ कि बीबीसी का चेहरा रंगत बदलनी कब से शुरू हुई, क्योंकि आप उस दौर की गवाह रही हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कुर्बान साहब और विपुल मुद्गल, ये दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये आप लोगों के अलावा ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ तक बीबीसी हिंदी सर्विस का ताल्लुक है, ये लोग भी बहुत ही एकदम जाना पहचाना नाम है। कुर्बान साहब के लिए और विपुल के लिए चिट्ठियां भी आती हैं, अभी भी आप लोगों के लिए चिट्ठियां आती हैं। कुर्बान साहब, आपने और हमने तो वहाँ कुछ दौर में साथ काम भी किया है लंदन में, विपुल के साथ में काम करने का मौका नहीं मिला। आप बताइए कि जब आप पहली बार बीबीसी में आए तो आपके जहन में श्रोता की क्या तस्वीर थी?
دیکھیے بی بی سی سے میرا عشق 1975 میں شروع ہوا جب جے پی موومنٹ چل رہا تھا اور 6 مارچ 1975 کو میں پہلی بار دلی اس ریلی میں آیا تھا جس کو جے پی نے لیڈ کیا تھا اور پارلیمنٹ کو ایک میمورینڈم دیا تھا. تو وہ قصے کہانیاں اور خبریں بی بی سی سے سننا کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے فوراً بعد ایمرجنسی لگ گئی. اور اس زمانے میں رتناکر بھارتی کا آج کل وہ ہمارے لیے مسٹ ہوتا تھا کیونکہ وہی ایک چیز ہوتی تھی جو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے. جے پی کس حال میں ہیں, کس اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, جارج فرنانڈیز کہاں ہیں, ان کے وہ انڈر گراؤنڈ تھے, لیلا فرنانڈیز ان کی بیوی.
یہ آپ بتا رہے ہیں ایک شروتا کی حیثیت,
ایک شروتا کی حیثیت سے. لیکن میرا تعلق شروع ہوا بی بی سی سے 1986 میں جب میں اس کا اسٹرنگر بنا یو پی میں اور دلی آفس کے لیے رپورٹ کیا کرتا تھا. مارک ٹلی اور ستیش جیکب کی جوڑی اس وقت ہوتی تھی. اور پھر میرا سلیکشن تو 1994 میں ہوا, 93 میں رادر, لیکن اچلا جی نے مجھے اس سے پہلے ہی موقع دیا بی بی سی میں کام کرنے کا. میں صبح کو اخباروں کے ریویوز کیا کرتا تھا جو اس زمانے میں ایس پی سنگھ, مدھوکر اپادھیائے, سلمہ زیدی, پدمانند جھا اور سنجے پگلیا ہم لوگ کیا کرتے تھے.
اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے اچلا شرما کے بارے میں کہا کہ آپ کو جب آپ نے جوائن کیا اس سے پہلے موقع دیا. میں جب لندن پہنچا تھا تو میں بی بی سی میں نہیں تھا, میں صرف نیوز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور وہ موقع اچلا جی آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے دیا تھا, شکریہ آج کہنے کا موقع ہے. وپل جی آپ اور ہم ساتھ کام نہیں کیے وہاں پہ کیونکہ آپ بہت پہلے چھوڑ کے آ گئے تھے, تو آپ کیسے بی بی سی میں پہنچے اور کیا شروعاتی یادیں ہیں؟
دیکھیے میں تو وہاں محض ایک سنیوگ سے پہنچا. میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انگلینڈ گیا ہوا تھا ایک فیلوشپ پہ, نہرو فیلوشپ پہ, اور وہاں پہ میں کچھ کام دھندے ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے انوادک کا کام ملا. اور اس کے بعد جب میری آواز اچلا جی نے سنی تو انہوں نے کہا ارے تم تو بول بھی سکتے,
براڈ کاسٹنگ کر سکتے.
اور میں اسی دن براڈ کاسٹر بن گیا. اور پھر میں نے ایسا بھی تھا کہ اب پھر کہنا چاہیے مجھے, میں پھر کہتا تھا پہلے. تو یہ سب چیزیں وہاں پہ ٹھیک ہوئیں. اونکار جی نے کان پکڑ کے ہندی سکھائی, اور جو لوگ انگلینڈ جاتے ہیں انگریزی سیکھتے ہیں, میں نے انگلینڈ جا کے ہندی سیکھی اور مزہ آ گیا. جو کام کرنے کا, ریڈیو کا دیکھیے جو
رومانس,
وہ کبھی اتنا نروس ہوتا تھا ان لوگوں کے سامنے, قربان جی, اچلا جی اور پرویز عالم, بڑے بڑے نام تھے اونکار جی. لیکن جب ریڈیو کی رپورٹنگ جو تھی وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. دیکھیے کارگل کا یدھ چل رہا تھا اور گولے گر رہے تھے, اور میں اچانک کسی جگہ پہ پہنچا اور رپورٹنگ کرنی ہے تو کیسے کریں آپ رپورٹنگ, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. گولے گر رہے ہیں تو پھر کیا ہوا, دھاڑ 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 آواز ہو رہی ہے, پھر ریڈیو کہاں آیا اس میں. تو کچھ لوگ مزدور وہاں کام کر رہے تھے, ان سے پوچھا کیا ہوا, ارے گولا گرا ہے. تو گولا کہاں سے آیا, پاکستان سے آیا. تو ٹھیک ہے, اسکول میں گئے, بچوں سے پوچھا, تو سڈنلی لگا کہ ریڈیو اتنا آسان نہیں ہے. شروتا کو بتانا کہ کیا ہو رہا ہے, رپورٹنگ ہم لوگ تو لکھتے تھے خالی, اس میں نہ
ہندی انگریزوں کے
جی, اور لوکیشن ساؤنڈز چاہیے اور وہ آوازیں, وہ جیونت ہوتی تھی, لگتا تھا ہاں یدھ ہو رہا ہے.
اچھا جی میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں کہ جب بی بی سی کی تصویر بدلنی شروع ہوئی, لیکن بی بی سی میں بش ہاؤس میں رہتے ہوئے میں نے جو سیکھا, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اچلا شرما سے کہہ رہا تھا کہ براڈ کاسٹر کے طور پہ میں نقلی ہوں کیونکہ میرا پرنٹ کا بیک گراؤنڈ ہے اور براڈ کاسٹنگ آتی نہیں تھی. آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے, سن سن کے براڈ کاسٹنگ سیکھی ہے. اور آواز کی تہذیب کہ آپ جیسے آپ نے بم گولے کی بات کہی, میں برازیل امیزون کور کرنے گیا تھا, آپ ہی نے بھیجا تھا, وہاں کی جو آوازیں تھیں امیزون کے جنگلوں کی, چڑیوں کی, وہ سب اب عام طور پہ جب ہم کبھی پڑھانے کے لیے جاتے ہیں آئی ایم سی وغیرہ میں, تو بچوں کو سب سے پہلے وہی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ریڈیو کر رہے ہیں تو آپ اپنے کو پیچھے رکھ کے آوازوں کو آگے رکھیے. تصویر بدلنی کب سے شروع ہوئی؟
تصویر بدلنی شروع ہوئی 1980 کے دشک کے انتم دنوں سے. 88-89 کے زمانے میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو شام کا پروگرام ہوا کرتا تھا جس کا پہلے نام تھا پچھلے پہر اور پھر گھٹنا چکر کے نام سے وہ آیا, اب آج اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر بدل دیے وہ نام, وہ جو کاریکرم تھا اس میں کسی سے بات چیت, کسی دوسرے پترکار سے, مجھے یاد ہے کہ ماسکو میں ایک دیو مرارکا ہوا کرتے تھے, ان سے بات چیت ریکارڈ ہوتی تھی. تو وہ کاریکرم تھا جہاں سے باہر کی آوازوں کو شامل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر 1990 کے دشک کے شروع میں ہم نے ایک نیا پریوگ شروع کیا, وہ تھا وشو بھارتی کو لے کر, جو صبح کی سبھا ہوا کرتی تھی. تو وشو بھارتی کا سوروپ بدلنا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے بہت سے کاریکرم بنا باہر کی آوازوں کے ہوا کرتے تھے, ساؤنڈ بائٹس کے اور دوسرے طرح کے جو دھونیاں ہوتی ہیں ان کے بغیر, सिर्फ हमारी सबकी आवाजों के बल पर चलते
लिखे हुए स्क्रिप्ट,
लिखे हुए स्क्रिप्ट से चलते थे। मुझे तो याद है कि
हालांकि उस दौर में भी इतना पॉपुलर था बीबीसी हिंदी।
राजेश आप सोचिए, मैं 81 में बीबीसी हिंदी में गई और कोई 1.5 साल बाद मुझे मौका मिला, ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम कहलाता था शाम का आजकल, और मुझे 1.5 साल बाद मौका मिला उसे प्रेजेंट करने का, और वो भी कैलाश जी ने अचानक, मैं तो तैयार भी नहीं आई थी, और कहा कि दोस्त इसी तरह बात करते दोस्त
कैलाश बुधवार की बात कर रही है,
हाँ आज आज तुम आजकल संभाल लो। मैंने कहा कैलाश जी, मैं बोला हाँ हाँ कोई तो दिन आएगा। तो 1.5 साल बाद उसे करने का मौका मिला, जिस कार्यक्रम को रत्नाकर भारतीय क्या करते थे और कैलाश जी स्वयं करते थे किसी जमाने में, ओंकार जी प्रस्तुत किया करते थे, विश्वदीपक त्रिपाठी, बड़े बड़े नाम थे उस जमाने के, और वो कार्यक्रम मुझे करने का मौका मिला और उसमें कोई एक्चुअलिटी नहीं थी, और वो दिन मुझे याद है, वो था 10 नवंबर 1982, और उस दिन सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ब्रेजनेव की मौत हुई थी। तो वो कार्यक्रम मैंने किया था जिसमें कहीं कोई बाहर की ध्वनि नहीं थी, लेकिन हाँ डिस्पैचेस थे और बहुत सारे डिस्पैचेस थे और
अच्छे अच्छे
तो परिवर्तन ये फिर हाँ घटना चक्र, उसके बाद में विश्व भारती, और फिर उसके साथ धीरे धीरे बहुत कुछ बदला, क्योंकि 90 के दशक के मध्य तक आते आते कुर्बान और मधुकर उपाध्याय दिल्ली दफ्तर में, जो आईफेक्स में हुआ करता था, वहाँ पे दिल्ली दफ्तर में हिंदी की उपस्थिति बनी दो प्रोड्यूसर्स के माध्यम से, दो पत्रकारों की। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात हुई कि हिंदी में पत्रकारिता का सिलसिला शुरू हुआ
जी,
और हमने
पहले साहित्यिक रुझान ज्यादा हुआ करता
हाँ हिंदी में पत्रकारिता का, क्योंकि पहले अंग्रेजी के डिस्पैचेस अनुवाद करके पढ़े जाते थे, अब वो निर्भरता कम करने के लिए हमने कहा कि हमारा मौलिक
पत्रकारिता होनी चाहिए,
हाँ मौलिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें योगदान होना चाहिए। तो हमने जगह जगह अन्य क्षेत्रों में, जैसे रामदत्त त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में, मणिकांत ठाकुर और
सुबीर
भौमिक कलकत्ता में,
और
उमर फारूक, बहुत सारे लोग, बहुत सारे
तो ये अचला जी, जो आपने पूरा एक तरह से विहंगम दृश्य बीबीसी हिंदी सर्विस का दिया, हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे होंगे उनके लिए तो हम बहुत गंभीर प्रसारक पूरी अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेके आते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो भगदड़ होती थी शाम को 7:30 बजे से पहले, उसका एक छोटा सा किस्सा मैं बयान करना चाहता हूं, बल्कि मैं चाहूंगा कि कुर्बान अली इधर मेरे बाएं हाथ की तरफ बैठे हैं वो बयान करें, क्योंकि जैसे दो कॉमेट्स टकराते हैं, दो ग्रह आपस में टकराते हैं, तो बुश हाउस की एक गैलरी में कुर्बान अली और राजेश जोशी की ऐसी सामने आमने भिड़ंत हुई कि लगता है दर्द अभी तक हो रहा है।
दो दांत मैंने गंवा दिए, उसमें इतनी जोरदार इम्पैक्ट था, और आप न्यूज रीडर थे, शिवकांत उसको प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोग्राम को, मैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन आपका कहीं पता नहीं था, और शिवकांत ने चीख करके कहा कि न्यूज रीडर कहाँ है,
और न्यूज रीडर नया नया था, क्योंकि उस दिन पहला दिन मेरा बीबीसी में न्यूज पढ़ने का स्टाफ के तौर पर था, सब कुछ तैयार कर लिया था, 10 मिनट पहले सब कुछ तैयार था, लेकिन 7th फ्लोर से 7वीं मंजिल से हम 4थी मंजिल पे आते थे, और मैं 4थी मंजिल में भटकते भूल गया कि स्टूडियो कहाँ है दरअसल, और मैं अब जैसे जैसे घड़ी की सुई 7:30 बजाने वाली है, मैं भाग रहा हूँ पदहवासी में, सांस ऊपर नीचे, और उधर से ये भी भाग रहे हैं मुझे ढूंढते हुए। एक मोड़ पे हम आपस में एक दूसरे टकराए, और जब जिन श्रोताओं को याद होगा कि मैं मेरी सांसें उखड़ चुकी थी, और आकाश सोनी हमारे एक प्रेजेंटर थे, उन्होंने मेरे हाथ से वो उनके दिमाग में ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी ये वो दी कि मेरे हाथ से लेकर के पूरी न्यूज़ की स्क्रिप्ट, और फिर उन्होंने न्यूज़ पढ़ी, वो प्रेजेंटर थे। तो इस तरह के कई किस्से आपके साथ भी होंगे और विपुल जी आपके साथ भी हो रहे होंगे।
भाई साहब आजकल का जहाँ तक सवाल है, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अब तक कभी कभार मुझे ये ख्वाब आता है कि मैं स्टूडियो पहुंच गई हूँ और मैं अपना स्क्रिप्ट अधूरा लेके आई हूँ, आधा स्क्रिप्ट कमरे में रह गया और आधा मेरे सामने है।
इससे ये भी जाहिर होता है कि कितनी गंभीरता से आपने ब्रॉडकास्टिंग को लिया था जी, आज तक अगर आपके पास आ रही है।
मैं आपको बताऊं कि जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते थे उनको इतनी गंभीरता से लिया जाता था। एक बार एक कार्यक्रम था जो परवेज आलम प्रस्तुत करते थे, उसमें मुझे उन्होंने हिस्सेदारी को कहा, मैंने माफ़ी मांग ली क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती थी और हमको शाम को एक मीटिंग में जाना होता था जिसमें कि कई गर्भवती महिलाएं और डॉक्टर एक साथ आते थे और बातचीत करते थे। तो उन्होंने कहा, अरे इतना अच्छा मौका तो गंवाना नहीं चाहिए। तो विपुल, ये तुम जाओ मीटिंग में, लेकिन लौट के आके हमारे लिए रिपोर्टिंग करो। तब उसमें यह, मेरी पत्नी गर्भवती है, लंदन में मैं रहता हूँ और अभी पांचवा हफ्ता चल रहा है, पांचवें हफ्ते में महिला के शरीर में क्या क्या बड़े परिवर्तन होते हैं, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करते करते वो दिन आ गया जब हमारा बेटा हुआ, तो उस दिन संयोग से कार्यक्रम था परवेज आलम का, तो उसमें प्रसारित हो गया कि देखिए जो इतने दिनों से विवरण कर रहे हैं महिला के शरीर का, उनके बच्चा हो गया। तो मैं घर रात थी, फोन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे घर वालों को बीबीसी में सुन के समाचार मिल गया कि बच्चा हो चुका है।
इसीलिए देखिए, ये जो आपने बात की बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो चीज़ें वहाँ से स्टूडियो से प्रसारित होती थी, श्रोता जो दूर दराज के गाँवों में, कस्बों में, झारखंड में या बाड़मेर में बैठे हुए थे, आप लोग हाउसहोल्ड नेम्स बन चुके थे। आपको इस बात का एहसास था परवेज साहब कि आपकी इतनी बड़ी करेंसी है हिंदुस्तान में कि परवेज आलम को लोग जानते हैं, अचला को जानते हैं, कुर्बान विपुल को गांव-गांव में।
देखिए, इसका अंदाजा हो गया था, इसलिए कि मैं तो ऑल इंडिया रेडियो के बैकग्राउंड से गया था, तो जर सी बातें लिसनर्स के साथ में एक सिलसिला बना रहता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई थी जब हमने ये कहा कि भाई इस तरह के सुझाव हैं यहाँ पे कि सेक्स एजुकेशन पे प्रोग्राम शुरू किया जाए। उसकी वजह यह कि एक बड़ी तादाद में ऑल इंडिया रेडियो में जो मेरे लिसनर्स थे वो ख़त लिखते थे कि साहब आपने ऑल इंडिया रेडियो में 1984 में प्रोग्राम शुरू किया था पहला सेक्स एजुकेशन का, तो यहाँ पे भी कीजिए। और सब फिर हमने कहा कि ठीक है, आप आपने ख़त लिखी और देखें कि क्या मसाइल हैं आपके, उस हिसाब से प्रोग्राम करते हो। साहब मतलब कुछ ही दिनों में 10,000 से ज़्यादा ख़त आ गए। खत तो ज्यादा आए थे लेकिन 10,000 पे हमने उनको रोक लिया
कि आप मत भेजिए,
आप मत भेजिए। और 10,000 खत जो है, उस जमाने में प्रेमा बाली होती थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, बहुत मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट, उनको थमा दिया कि साहब जरा एनालाइज करिए कि इनके क्या मसाइल हैं। तो है क्या कि पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम इसलिए होता है, ज्यादातर बीबीसी के ऐसे प्रोग्राम होते थे जहां लिसनर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता था, उनको बाकायदगी से साल में डायरी भेजी जाती थी, उनके साथ में राबता कायम किया जाता था और जो यहाँ मौजूद हैं वो इसको कंफर्म करेंगे।
अचला अपने हाथ उठा रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं।
सब श्रोताओं के साथ मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। सबसे पहले मुझे श्रोताओं से मिलवाया ओंकारनाथ श्रीवास्तव जी ने
जी।
क्योंकि वो आपका पत्र मिला कार्यक्रम किया करते थे, तो अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि
जिसमें आपने बाद में हमें भी मौका
जी 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 कि मेरे साथ में इसमें शामिल हुआ करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा काम होता था आवाज़ लगाने का, यानी चिट्ठियाँ पढ़ने का, जवाब वो देते थे। तो श्रोताओं की चिट्ठियाँ पढ़ने का जो अभ्यास था मुझे वहाँ से हुआ, और वहाँ से इस बात का अनुभव हुआ कि श्रोता कितने ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, और उनके लिए एक तरह की ये लाइफ लाइन है जिन्हें कोई जानकारी और कहीं से नहीं मिलती। ये पुराना जमाना है, अब आज तो हर मिनट पे
उन्हें आ रही हैं।
जी जी जी,
कुर्बान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आज जो चिट्ठियाँ आ रही हैं, फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, रियाद से एक फ़ोन आया और वो श्रोता फ़ोन पे ही रोने लगे कि आप ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं, क्यों बंद हो रहा है हिंदी सर्विस। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अपना मियाद पूरी करती हैं।
आप ये कह रहे हैं, अब से कुछ साल पहले जब ये खबर आई थी कि बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम बंद होने वाले हैं, तो एक श्रोता ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आप लोग पैसे की दिक्कत है क्या, उनसे कहिए। हाँ, उनसे कहिए कि एक प्रोड्यूसर की तनख्वाह हम इकट्ठा कर देंगे, उनका कोई श्रोता संघ।
जी हाँ, बहुत सारे लोग
हाँ हैं। पर श्रोताओं के साथ संपर्क के एक दो और किस्से हैं मेरे सामने। एक तो 1990 में मैं कैलाश जी के साथ जब बीबीसी हिंदी की गोल्डन जुबली मनाई गई स्वर्ण जयंती, तो हमने बहुत से जी और बहुत से लाइव प्रोग्राम हम लोगों ने किए थे। तो हम भोपाल में थे और एक शाम खाली थी हमारे पास, उसमें चार शहरों से हमने लाइव डिबेट किए, दिल्ली से एक लाइव कॉन्सर्ट किया था। तो उस बीच में भोपाल में जब हम थे, एक शाम खाली थी, तो कैलाश जी और मेरे बीच मशवरा हुआ कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा भाई एक शाम की सभा में अनाउंस करवा दो कि कल हम इस वक्त फलां जगह मौजूद होंगे। सिर्फ एक कार्यक्रम में ये घोषणा की गई और अगली शाम आसपास मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से भी लोग, कुछ तो ऐसे थे जो रात में गाड़ी में चढ़ गए,
सफ़र
करके वहाँ, और भरा हुआ हॉल था। जब 2004 और से लेके 2006 के
हमने रोड शो किए,
जहाँ जहाँ हम गए असंख्य श्रोता वहाँ मौजूद मिले हमें, और इतने खुलूस से, इतने प्रेम से, इतनी मोहब्बत से वो मिलते हैं, वो ऐसे मिलते हैं जैसे हम उनके अपने परिवार के सदस्य हैं,
और इसी वजह
वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी जिंदगी की समस्याएं दूर कर देंगे।
हाँ, जैसे कि बीबीसी के पास हर समस्या का समाधान है। अर्चला शर्मा लिखते हैं आज भी कि अर्चला दीदी कहाँ हैं, परवेज साहब
हमसे पूछिए,
हमसे पूछिए प्रोग्राम होकर बता। आपने
ममता जी क्या करती थी
और दर्पण भी होता था आपका। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा ना कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीजें होती थी, परवेज साहब ऑन एयर चीजें ऐसी कर देते थे कि कई बार आदमी नर्वस हो जाता था। मसलन मैंने किरण बेदी का इंटरव्यू किया, वो आईजी प्रिजन तिहाड़ थी और उनको मैगसेसे अवार्ड मिला, और उस पैकेज को इंट्रोड्यूस करते हुए आजकल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज हमारे साथी कुर्बान अली को तिहाड़ जाना पड़ा, और फिर थोड़ा सा पॉज। तो इस बीच में काफी लोगों को ये तश्वीश हो गई कि
जेल तो नहीं चले गए,
जेल चले गए, और इस तरह की चीज़
पर्सनल टच,
पर्सनल टच,
लेकिन हर ब्रॉडकास्टर ऐसा नहीं करता,
नहीं कर सकता।
कुछ खास लोग
एक
होते हैं।
और ये सब ये जो आपका पत्र मिला, ये दोनों करते थे। तो उसमें मैं शायद कहीं गया हूँगा, महाराष्ट्र में कहीं दौरे पर था, तो वो जिक्र किया इन्होंने किसी पत्र के जरिए से, और कहा कि कुर्बान अली का अगला पड़ाव वर्धा होगा और हमारा अगला पड़ाव फलाने।
एक छोटा सा किस्सा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक बार ट्रेन में मैं कहीं जा रहा था, ऊपर की सीट पे बैठा हुआ था, नीचे गर्मा गर्म बहस किसी मुद्दे पे चल रही थी, तो मैंने वहां पर कुछ हस्तक्षेप किया, तो किसी ने मुझसे नीचे से पूछा क्या आप विपुल मुद्गल हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो बीबीसी के इतने श्रोता होते थे देश भर में, और जो आपको, आपकी आवाज को, आपके अंदाज को पहचानते थे।
शायद यही हमारी पूंजी है, हम लोगों ने जो संजोया है, और अब वो मकाम आ गया है जब अपने श्रोताओं से गुड बाय कहने का और खुदा हाफिज कहने का और खुश रहे कहने का वक्त आ चुका है। अब आखिर में आप लोग बीबीसी हिंदी सेवा से जो आपका एसोसिएशन है, और बीबीसी हिंदी सेवा तकरीबन 80 साल पूरे करने जा रही है, इसको कैसे याद किया जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इस पर एक एक सेंटेंस परवेज साहब, वाचला जी आप सब लोग कहें, और उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे।
देखिए, जब भी किसी भी चीज़ की तारीख लिखी जाती है तो उसमें टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो जुर्रत है, जो हिम्मत है, वो हमें अपने साथियों से मिलती है, वो और जब वो मिलती है तो हम सब लोग अपनी अपनी जगह खासी ताकतवर हो जाते हैं। एक शेर है मजाज का, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सुना ही दूँ। बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रतें मजाज, बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रतें मजाज, डरते नहीं सियासत अहले जहां से।
क्या बात, वाह वाह।
तो इश्क हमें नसीब होता है दोस्तों के माध्यम से। मुद्गल साहब, पत्रकारिता पे आपने बहुत कुछ लिखा है।
मेरा मानना यह है कि बीबीसी में मैंने ये सीखा कि यहाँ पर जिस तरह बड़े बड़े राजनेता आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, राजेश पायलट आते थे, उनको कई लोगों को, नेताओं को हम इस तरह कह देते थे कि अभी हमारे पास बहुत कम समय है, अपनी गाड़ी में ही आप सीधे आ जाइए, और वो आ जाते थे आपके प्रोग्राम के पहले, लेकिन हमेशा एक हाथ का डिस्टेंस, कभी इतना नज़दीक किसी के भी ना जाओ कि आप कोई ऐसी स्थिति हो कि आप उनको क्रिटिसाइज ना कर पाओ।
प्रतिबद्धता जो है वो श्रोता के प्रति थी, किसी विचार, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता के प्रति नहीं रही। कुर्बान साहब,
आज जब 80 साल के बाद बीबीसी हिंदी की आवाज़ खामोश होने जा रही है, बस क्योंकि एक तरह का एडिक्शन भी रहा है, एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूंगा कि गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी है दोस्त, बड़ी उदास बड़ी बेकरार गुजरेगी।
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कुर्बान साहब ने जो कहा, जो शेर अभी सुनाया, उसके बाद कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक वाक्य कहना चाहूँगी कि बीबीसी ने जो मुझे दिया, यानी मेरी तंग नज़री थी बीबीसी में शामिल होने से पहले, वो दूर हो गई, मुझे दूर दृष्टि मिली, मुझे और बाहर तक देखने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि वही मौका बीबीसी हिंदी के श्रोताओं को इतने वर्षों में, 80 वर्षों में मिला है। असल बात यह है कि वक्त के साथ में बहुत कुछ बदलता है, और वक्त के साथ में ज़रूरतें भी बदलती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे श्रोता बीबीसी हिंदी के साथ अपना नाता बनाए रखेंगे, मैं अचला शर्मा आपसे इजाज़त चाहती हूँ।
मैं कुर्बान अली भी आपसे इजाजत चाहता हूँ।
मैं विपुल मुद्गल भी आपसे इजाजत चाहता हूँ।
पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, मैं चंद ख्वाब जमाने में छोड़ आया था। परवेज आलम को इजाजत दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आलम साहब। मैं राजेश जोशी आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना वक्त निकाल के यहाँ पे आए, इतनी पुरानी यादें आपने हमसे साझा की, और हमारे श्रोता, बहुत सारे श्रोता, इन यादों को संजो कर रखेंगे आने वाले कई बरसों तक। शुक्रिया। बीबीसी हिंदी रेडियो की यह खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार, बर्लिन में वैश्विक नेताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि लीबिया में चल रही लड़ाई का अंत होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने बर्लिन जाने से पहले कहा था कि आज की उच्च स्तरीय बातचीत संघर्ष विराम की ओर एक और बढ़ता कदम होगी। ब्रिटेन के शाही परिवार में डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मर्केल के पिता ने प्रिंस हैरी और अपनी बेटी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शाही उत्तरदायित्व को छोड़कर शाही परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु वनडे में भारत के सामने 287 रनों का लक्ष्य रखा है। फिलहाल भारतीय टीम ने 35 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए हैं। बीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। कल शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। तब तक देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।